छठा स्कंद अध्याय संख्या 9। अध्याय का नाम है वृतासुर का आविर्भाव। श्लोक संख्या 34। दुर्वबोध दुर्बोध इवा अत्यंत तव आपका अयम यह विहार योग सृष्टि पालन तथा संहार की लीलाओं में व्यवस्था व्यस्तता यत जो अशरण किसी अन्य पर आश्रित ना होना अशरीर शरीर रहित इदम यह अनवेक्षित बिना प्रतीक्षा किए असमत हम सबसे समवाय सहयोग आत्मना आपके द्वारा एव निसंदेह अविक्रियमाणेन बिना परिवर्तित हुए सागुणम प्रकृति के तीन गुण आगुण ऐसे भौतिक गुणों से दिव्य सृजसी आप सृष्टि करते हैं पासी पालन करते हैं हरसी संहार करते हैं। अनुवाद हे भगवान आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती क्योंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपवर्तित रूप में ही इसके भौतिक अर्वर्यों की पूर्ति करते हैं। अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं। तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त गुणों से परे हैं। अतः आप दिव्य कर्मों लीला को समझ पाना कठिन है। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ब्रह्म संहिता 5:37 में कहा गया है गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। श्री भगवान कृष्ण गोलक वृंदावन में सदैव निवास करते हैं। ये भी कहा गया है वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। श्री कृष्ण वृंदावन से एक पग भी दूर नहीं जाते। इतने पर भी यद्यपि कृष्ण अपने धाम गोलक वृंदावन में रहते हैं किंतु साथ ही वे सर्वव्यापी होने से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। बद जीव के लिए यह समझ पाना कठिन है किंतु भक्त समझ लेते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार एक साथ अपने धाम में रहते हुए सर्वव्यापी हैं। देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः परमेश्वर के देह रहित होते हुए भी उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे सर्वत्र प्रसरित हैं माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। फिर भी वे अपने आध्यात्मिक रूप में सर्वत्र उपस्थित नहीं रहते। मायावादी दर्शन के अनुसार सर्वव्यापी होने के कारण परमेश्वर को किसी दिव्य रूप की आवश्यकता नहीं पड़ती। मायावादी ये मानते हैं कि ईश्वर का स्वरूप सर्वत्र फैला हुआ है अतः उनके कोई रूप नहीं होता। यह असत्य है। भगवान का दिव्य रूप होता है और उसी के साथ वे इस सृष्टि के कोने कोनों में फैले हुए हैं। हरे कृष्णा। तो वृतासुर का आविर्भाव बहुत ही रोचक प्रसंग है और बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है। इस अध्याय में दो बारी देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। पहली बारी तो जब इंद्र ने किसका वध किया था विश्वरूप, उनके कितने मुख थे 3 मुख वाले विश्वरूप का वध किया। उनको पुरोहित बताया, पुरोहित से उन्होंने इंद्र को नारायण कवच दिया। उस नारायण कवच से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन विश्वरूप साथ साथ थोड़ी सी कमीशन असुरों को भी दे रहे थे तो इससे क्रोधित होकर इंद्र ने उस ब्राह्मण का वध कर दिया। तो जब ब्राह्मण का वध कर दिया तो विश्वरूप के पिता कौन थे? पृष्ठा। उन्हों ने क्या किया, एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने क्या गलती की थी, मंत्रों के उच्चारण में क्या गलती हो गई थी, थोड़ा सा लंबा बोल गए थे। वैदिक वर्ड्स मीटर थोड़ा गलत ना हो तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र में ऐसी कोई कोई कठिनाई नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और लंबा भी बोलने की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन त्वष्टा ने थोड़ा सा लंबा बोल दिया, उसका प्रभाव क्या हुआ, उन्होंने बोला था कि उनके शत्रु इंद्र के शत्रु उत्पन्न हुए, लेकिन ऐसा मतलब निकल गया कि ऐसे व्यक्ति जिसके इंद्र शत्रु हैं वो उत्पन्न हो, तो वृत्तासुर उत्पन्न हुए। तो वृत्तासुर ऐसे व्यक्ति जिसके इंद्र शत्रु हैं, और वो वृत्तासुर बहुत ही विशालकाय और बहुत ही भयानक, लेकिन वास्तव में आगे बात जाके मालूम चलेगा वो भगवान के शुद्ध भक्त होंगे। तो इंद्र देवताओं ने जब देखा वृत्तासुर के इस रूप को, तो उन्होंने उन पर अपने अस्त्रों से उन पर आक्रमण किया। वृत्तासुर ने क्या किया, सारे के सारे अस्त्र निकल गए निकल गए सारे। ये सोचकर देवता गए अब तो कोई स्कोप ही नहीं है, हम तो हार गए। तो घबराकर उन्होंने क्या किया, भयभीत होकर भगवान से प्रार्थनाएं की। जब भगवान से प्रार्थनाएं की, भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए तो उन्होंने फिर से भगवान को प्रणाम करके भगवान के लिए प्रार्थनाएं की। तो ये प्रार्थनाएं वो चल रही, दो बारी प्रार्थनाएं की, बड़ी भगवान को प्रकट करने के लिए, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो फिर दोबारा से ये प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये प्रार्थना में भगवान की अचिंत्य शक्तियों का वर्णन किया गया है, और हम बद जीवों के लिए इसको समझ पाना बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि अचिंत्य मीन्स इनकंसीवेबल हमारे चिंतन से परे हैं, तो हमारा एक ही कर्तव्य रह जाता है कि हम उनका गुणगान करें। जब उनका गुणगान करेंगे तो निश्चित रूप से हम शुद्ध होंगे और भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। जो व्यक्ति हमें जितना हम पसंद होता है, अगर उस गुणों गुणगान करते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, और दूसरा किसी गुणों गुणगान करके हम उनके प्रिय बन सकते हैं। तो आज इस श्लोक के माध्यम से हम भगवान के कुछ अचिंत्य शक्तियों का गुणगान करने का प्रयास करेंगे, हम सबकी शुद्धि के लिए और भगवान के और भक्तों के दिव्य आनंद के लिए। तो यहां पर बताया जा रहा है दुर्वबोध, दुर्वबोध क्या है, दुर्व मीन्स अत्यंत कठिन, दुर्बोध आपको जानना अत्यंत कठिन है। दुर्वबोध, बोधा मतलब ज्ञान, बोध मतलब ज्ञान, दुर्व बहुत कठिन है आपको जान पाना, भगवान को जान पाना बहुत कठिन है, एक साधारण व्यक्ति को जानना भी बहुत कठिन है। तो भगवान को समझा, पूरी सृष्टि की रचना की है उसको जान पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन मनुष्य जीवन में अधिक बुद्धि विकसित चेतना इसलिए मिली है कि हम भगवान के इस अचिंत्य शक्तियों के माध्यम से भगवान को समझ सके, इसलिए बताया गया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो का मतलब कि अब तो शुरू कर दो, इससे पहले हम 84 लाख योनियों में भटकते रहे, 80 लाख योनियों में कहने के चाहिए, निम्न योनि में 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं। जब मनुष्य योनि में आए हैं और अब भक्तों के संग में आए हैं तो अब हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, और ये ब्रह्म की जिज्ञासा निरंतर चलनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण असीमित हैं, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। तो ये मनुष्य जीवन जिज्ञासा करने को मिला है ब्रह्म के विषय में, हमारी प्रत्येक क्रिया ब्रह्म की जिज्ञासा की तरफ होनी चाहिए। हम बिजनेस में कर रहे हैं तो एक तरफ से हमें ब्रह्म के समीप ले जाए, कृष्ण के समीप ले जाए, लेकिन हमारी जिज्ञासाएं ज्यादातर ये रहते हैं कि शेयर मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, और आजकल तो सब्जियां बहुत महंगी है, सब्जी मार्केट में क्या सब्जी का प्राइस चल रहा है, लेकिन हम लोग ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा कम करते हैं। मनुष्य जीवन ब्रह्म जिज्ञासा करके और ब्रह्म के विषय में सुनकर हम भगवान के करीब जा सकते हैं, भगवान के समीप जा सकते हैं, और ये कोई चॉइस की बात नहीं है। हम जो लोगों को बोलते हैं कि मंदिर से जुड़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, तो अक्सर लोग बोलते हैं डोंट पुश मी सो हार्ड, आप थोड़ा दूर रहिए। घर में भी जब होता है, पति बन जाता है, पत्नी वो चाहता है कि पत्नी भी भक्ति में आए, बच्चे होते हैं सोते माता पिता भी आए, माता पिता होते हैं सोते बच्चे भी आए, लेकिन आजकल हर लोग इतने स्वतंत्र हैं, बोले डोंट, आप अपनी मर्जी कीजिए, मैं अपना मर्जी करता हूँ, ठीक है, मैं कहीं और जाता हूँ आप कहीं और जाते हैं, तो रहने दीजिए। लेकिन ये किसी के लिए विकल्प नहीं है, मनुष्य जीवन इसीलिए दिया गया है कि हम ब्रह्म के बारे में जाने। ब्रह्मारण्यक उपनिषद में बताया गया है नाचेत अवेदिन महतिम वनिष्ठा, नाचेत अवेदिन, अगर कोई ब्रह्म के विषय में नहीं जानता महतिम वनिष्ठा, उसका बहुत बड़ा क्या होता है, विनाश। और तद विदु अमृताय ते भवंती, अगर कोई जान जाएगा, विदु का मतलब जान जाएगा, तो क्या होगा, अमृताय ते भवंती, वो अमृत तत्व को प्राप्त करेगा। अन्यथा क्या होगा, अथ तरह दुखम एव आपनोति, अन्यथा वो दुख को ही प्राप्त करेगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जाने, जैसे कि अर्जुन का फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस था भगवान को जानने का। अर्जुन ने क्या बोला, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, कि आप परम ब्रह्म हैं, आप पवित्र हैं, आप परम धाम हैं। ये अर्जुन का व्यक्तिगत अनुभव है। तो जब हम इसको पढ़े तो हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए हम भी भगवान को ऐसे जान सके। और निश्चित रूप से शिला प्रभुपाद के दिव्य विधि का पालन करके प्रभुपाद कहते हैं कि हम कृष्ण को देख पाएंगे, जान पाएंगे, हम कृष्ण की लीलाओं में भाग ले सकेंगे, कृष्ण को आनंद प्रदान कर सकेंगे। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अक्सर लोग जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, देखिए भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, कृष्ण बलराम की जय। तो अक्सर ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि जो भक्ति है ये कम बुद्धि वालों के लिए है, सेंटिमेंटल फूल्स के लिए, उछलो कूदो नाचो गाओ बेचारे, भगवान के आगे प्लेट रख देते हैं वापिस उठा लेते हैं, अगर भगवान ने खाया होता तो ऐसे ऐसे कैसे पड़ा है। तो ये तो बेचारे भावुक लोगों के लिए भक्ति है। असली जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो वेदांत सूत्रों को अच्छे ढंग से समझते हैं, गहराई में जाते हैं, तो वो बुद्धिमान है। लेकिन बिल्कुल बात उल्टी है, बहुत विशेष बुद्धिमान व्यक्ति और सौभाग्यशाली व्यक्ति ही भक्ति में जुड़ता है। बहुत विशेष बुद्धिमान और भाग्यशाली लोग भक्ति में जुड़ते हैं। तो हमें इस पर गर्व नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए हमारे पर कितनी बड़ी कृपा हो या कि हम इस जाने को प्रयास करें। तो भ्रम को जाने का हमें प्रयास करना है भगवान के अचिंत्य शक्तियों, भगवान के ऐश्वर्यों के माध्यम से। तो सबसे पहले देवता कह रहे हैं कि दुर्बोध, आपको जानना बहुत कठिन है, और अगर हम सारे वैदिक शास्त्र पढ़ भी लेंगे तभी हम भगवान को नहीं जान सकते, भगवान हमारी तर्क बुद्धि से परे हैं। क्या बताया गया वेदांत सूत्रों में, अचिंत्याय खलु ये भावानात आसम तर्क ये, तर्क से हम भगवान को नहीं समझ सकते। अचिंत्याय बिल्कुल अचिंत्य, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप बिल्कुल अचिंत्याय। आप कैसे कोई कल्पना कर सकते हैं कि भगवान के नाम हरे कृष्ण महामंत्र कोई 22 घंटे भी जप सकता है और अगले दिन फिर जप रहा उसी उत्साह से। इस बहुत ही ज्यादा कोई नाम लेते हैं तो हम उब जाते हैं, वही भगवान के विग्रह हम प्रतिदिन देखते हैं। तो इन सब बातों को एक तर्क बुद्धि से परे है। तो वैदिक शास्त्रों को भी अगर हम पूरा पढ़ लें समझ लें तभी भगवान को नहीं समझ सकते। वेदेशु दुर्लभम और दुर्लभम आत्म भक्तो, केवल प्रेमा भक्ति से भगवान को प्रेम कर भगवान की सेवा कर ही हम भगवान को जान सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम अविग्रह इंद्रियं सेवा मुख ही जीवा दो स्वयमेव स्मृति अदा, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में जुड़कर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो जैसे कि भगवान जब इस धाम को छोड़कर जाने वाले थे तो उन्होंने उद्धव किस्म की भेंट हुई और भगवान सरस्वती नद के तट पर बैठे थे और उद्धव को उन्होंने एक संदेश दिया, बहुत ही गुप्त संदेश, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिया, गुप्त संदेश, बोला ये जाओ कहां पर, बद्रिका आश्रम, बद्रिका आश्रम में नर नारायण को दो ये संदेश और वहां के भक्तों को। तो वहां पे लिखा जा रहा है कि जो ये संदेश भेजा उद्धव के माध्यम से ये किसी वैदिक शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है, वैदिक शास्त्रों से भी परे है, लेकिन उद्धव को चुना गया एक बहुत ही गुप्त संदेश वाहक के रूप में और एक गुप्त संदेश देने के लिए। तो भगवान भक्तों के हृदय में ये बात प्रकट करते हैं। तो फिर उद्धव वहां पर गए और वहां पर उन्होंने नर नारायण जी को ये संदेश दिखाया और वहां के भक्तों के बीच में संदेश का गान किया। तो दुर्बोधा, भगवान को समझना हमारी बुद्धि से परे है और भगवान अचिंत्य है, तर्क बुद्धि से और वैदिक शास्त्रों के अध्ययन से भी हम उनको समझ नहीं पाएंगे। केवल भगवान के विषय में हम ज्ञान भगवान से ही प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। ना विदु सर्गुणा प्रभवाना महेश्या, देवतागण भी भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान देवतागण भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, बोले हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान का एक नाम है त्रिदश राय, त्रिदश राय का अर्थ है कि 33 देवताओं के स्वामी। कितने देवता होते हैं, 33 करोड़। 33 करोड़ में से 33 मुख्य हैं। 33 मुख्य क्या हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। ये हो गए 33। इन 33 देवताओं के मुख्य जो हैं भगवान त्रिदश राय, वो भी भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान का एक नाम है त्रिधीश, त्रिधीश का अर्थ है कि तीनों गुणों के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी, और तीनों विग्रह ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। श्री कृष्ण पुस्तक में कथा आती है भागवतम दशम स्कंद में कि महाविष्णु भी भगवान के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए क्या करते थे, सारा प्रयास कर नहीं किया तो ये इनके इन पर कारण, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। क्या किया उन्होंने, एक ब्राह्मण के पुत्रों को हरण करना शुरू करवा दिया। पढ़े है ना आपने कथा, अर्जुन ने भी संकल्प दिया, आप देखो मेरे सामने कौन इस ब्राह्मण के पुत्र को ले जाएगा, बाद में भगवान लेके बताता हूं तुम्हें क्या चल रहा है। सब लोगों से बाहर ले जाते हुए भगवान महाविष्णु के लोक में लगे, ये इनकी चाल है। सारे बेटों को गायब कर रहे थे ब्राह्मण के, क्यों, वो भगवान से मिलना चाहते थे, भगवान के त्रिभंग ललितम श्याम सुंदर कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे। तो ये देख सकते हैं हम किस ढंग से विष्णु भी, ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन जो भक्त अगर जो प्रेम से भगवान की सेवा में जुड़ेगा, भगवान उसको अपना ज्ञान उसके हृदय में प्रकट करते हैं। तेषां सततं सुखाय भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयन्ति ते। उसके बाद यहां बताया गया कि विहार योग, किस बात को नहीं समझ सकते, आपका जो विहार योग है, विहार योग क्या है, ये भौतिक जगत की सृष्टि और संहार करना भगवान के लिए विहार योग है। देखिए लीला है, आप मकान को बनाइए और फिर उसको हटा दीजिए, बोले तो मेरी लीला है, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। आप सोचिए विहार योग, ये भगवान का विहार योग है, और ये विहार योग किसमें करते हैं, योग निद्रा में, और ये क्या है भगवान का, योग ऐश्वर्य है। क्या, देखिए विहार योग है, क्या शब्द इस्तेमाल किए देवताओं ने, ये आपका विहार योग है। एक अत्यंत कठिन है, कैसे आप सृष्टि की लीला करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और उसका संहार कर देते हैं, कैसे, और जब इस विहार योग में आप लगते हैं तो क्या होता है, इतनी बड़ी सृष्टि की रचना, आप सोचिए कितने ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये तो ब्रह्मांड के में कितने, एक हमारा जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में 14 ग्रह हैं, उसमें से पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह में एक भारत भूमि है, भारत भूमि में दिल्ली क्षेत्र है, दिल्ली क्षेत्र में पश्चिमी पंजाबी भाग है, उसमें हमारा छोटा सा मकान है, हम सोचते हैं उस मकान में बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना हमें सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। बोले आपने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर दी अशरणा, किसी का सपोर्ट भी नहीं चाहिए आपको, किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करते, और फिर क्या है अशरीरा, आपका शरीर तो है नहीं, क्योंकि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है, बिना और अनवेक्षिता अस्मत् समवाय, कम से कम हमारे सहयोग की प्रतीक्षा तो की होती है ना, हम आपके शरीर के अंग ही हैं, इस शरीर को रिष्ट पुष्ट रखने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। हाथ काम करना बंद कर दे तो हम कैसे खाएंगे, कैसे कार्य करेंगे, आंखें देखना बंद कर दे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी से भी आपको सहयोग की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, उसकी प्रतीक्षा भी नहीं की, बिना शरण ग्रहण किए, बिना प्रतीक्षा किए आपने सृष्टि की रचना कर दी, ये तो आपका विहार योग है। ये समझ में नहीं आ रही बात, कैसे थॉमस एडिसन ने किसका इन्वेंशन किया था, बल्ब का, कितनी बारी प्रयास किया था, 8000 बार, फेल होता था, फिर करता था, फेल होता, फिर बोले कितना महान व्यक्ति है, एक छोटा सा बल्ब, और भगवान ने केवल सोचा और अनंत कोटि सूर्यों के उत्पन्न हो गए, अनंत कोटि चंद्रमा उत्पन्न हो गए। अब बताइए केवल सोचने मात्र से भगवान की सत्य संकल्प शक्ति है, सोचा, बाइबल में क्या है, लेट देयर बी क्रिएशन, भगवान ने कहा सृष्टि की रचना हो गई। ये भगवान है, भगवान का विहार योग, सृष्टि की रचना हो गई, इसमें उनको किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी भगवान के पैर दबा रहे हैं, उनके सामने भगवान ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बताइए, लक्ष्मी जी हैं साथ में, उनकी भार्या हैं, संतान की उत्पत्ति करती, भार्या के सहयोग की आवश्यकता पड़ती, नहीं आप पांव ही दबाते रहिए वैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कर देता, और खुद भी ऐसे हैं कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी ने छींक मारी तो बड़ा भगवान प्रकट हो गए, प्रहलाद ने बोला खंबे में है, हाँ खंबे में, वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, और ऐसे किसी को प्रकट भी कर देते हैं, भगवान राम ने पत्थर को छुआ अहल्या प्रकट हो गई, भगवान की दिव्य शक्तियां इसको हम समझ भी नहीं सकते। किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सभी देवतागण इनके आश्रय पर, हम सब जीव इनके आश्रय पर निर्भर है, ये किसी के आश्रय पर निर्भर नहीं है। और इनका जो देह है पूर्ण रूप से दिव्य है और ये प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे। और जब ये विहार योग में लगे हैं, सृष्टि की रचना कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको संहार कर लेते हैं, तब क्या है, इतना बड़ा काम है तो कुछ तो आप में विकार आता होगा। अविक्रमाणे न, बिना परिवर्तित हुए कोई विकार भी नहीं आता। आज आप लोग यहां पर अपने घर से मंदिर में आए होंगे तो आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ विकार आया, परिवर्तन? कोई भी कार्य करने के लिए हमें शक्ति को व्यय करना पड़ता है, खर्चना पड़ता है। आप लोग गाड़ी चला के आए, टैंकी में पेट्रोल उतने का उतना रहा होगा कि कम हुआ होगा? कम हुआ होगा ना। जो लोग पैदल आएंगे, साइकिल पर आएंगे, उनकी शक्ति कुछ कम हुई होगी। तो हम जो भी कार्य करते हैं शक्ति को लगाते हैं, वो शक्ति कम हो जाती है। तो भगवान ने इतना कार्य किया और कोई परिवर्तन ही नहीं, तो ज्ञानी लोग समझ रहे हैं इस बात को कैसे समझे? तो श्रीधर स्वामी जी बताते हैं, क्योंकि भगवान अनन्य शक्तियां, भगवान की अनन्य शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं। भगवान खुद भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव को बता रहे हैं कि अगर मैं चाहूं तो इस सृष्टि के एक एक अणु को गिन सकता हूं, कितने अणु हैं, लेकिन मैं खुद ही अपना ऐश्वर्य नहीं गिन सकता। खुद भगवान कह रहे हैं, जो सर्वज्ञ हैं, एक अमीर व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, उसके दुनिया भर के अरे बैंकों में इतना पैसा पड़ा है, बोले पता नहीं कितना पैसा पड़ा है। ऐसे भगवान के इतने ऐश्वर्य हैं, इतने ऐश्वर्य, बोले खुद ही अपने ऐश्वर्यों को मैं गिन नहीं सकता। अनन्य शक्तियां, उन्हीं शक्तियों से काम हो रहा है। और जब उन्हीं शक्तियों की तरह काम होता है तो कम बुद्धि वाले व्यक्ति देखता है कि शक्ति से तो काम हो रहा है, इसके पीछे शक्ति मानो उसको नजर ही नहीं आता। इसलिए इम्पर्सनलिस्ट लोग हैं, जो मायावादी लोग हैं, वो समझते हैं कि इन शक्तियों के पीछे कोई शक्तिमान नहीं है, शक्तियां ही अपने आप कार्य कर रही हैं और भगवान निराकार है। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान अपनी सृष्टि से न्यून थोड़ी हो सकते हैं, कम थोड़ी हो सकते हैं। अगर सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आकार है तो निश्चित रूप से भगवान का भी फॉर्म होगा। अगर भगवान का फॉर्म नहीं है, इसका मतलब अपनी क्रिएशन से ये वो कम है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो भगवान इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं, बिना भगवान में कोई परिवर्तन आए, केवल अपने सत्य संकल्प शक्ति के द्वारा। क्योंकि भगवान अद्वय हैं, भगवान और भगवान के मन में कोई अंतर नहीं है। हमारे मन में कितनी योजनाएं होती हैं, सोचते रहते हैं, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें कितने सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है और कितने लोगों के सहयोग की हम प्रतीक्षा ही करते रहते हैं, और सहयोग मिलता है नहीं मिलता, फिर भी वो मन की योजनाएं पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं होती। लेकिन भगवान ने केवल सोचा और सृष्टि की रचना हो गई, सोचना मात्र से ही सृष्टि की रचना हो गई। ये भगवान की सत्य संकल्प, भगवान अद्वय हैं, भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। हमारे और हमारे शरीर में अंतर है, और हमारे शरीर के भी अलग अलग भागों में अंतर है। हमारे हाथ पांव के कार्य नहीं कर सकते, हमारा मुख कान का कार्य नहीं कर सकता, नाक का कार्य नहीं कर सकता। भगवान अद्वय पूर्ण रूप से परम एब्सोल्यूट, उनके शरीर और उनके मन और उनमें कोई अंतर नहीं है, और उनके शरीर के प्रत्येक अंग दूसरे अंगों के कार्य कर सकते हैं, ये भगवान की महानता है। तो इस ढंग से देवतागण बता रहे हैं। और भगवान सर्वव्यापी हैं, जब सर्वव्यापी भगवान हैं तो फिर मायावादियों का कहना है कि फिर उनका रूप कैसे हो सकता है। एक लड्डू को लिया गया और लड्डू को बांट दिया गया, हाथ में कितने लड्डू बचेंगे? कुछ नहीं बचेगा। तो थोड़ा बुद्धि का उपयोग करो, जब भगवान कण कण में विराजमान हो गए तो भगवान कहां बचे? नहीं बचे, है ना। ये तो आपकी लोगों की भावुकता है, मूर्खता है, एक इमेजिनेशन की हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है, नए लोगों के लिए ठीक है, लेकिन वस्तुतः निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म में हमें लीन होना है, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। और वो लोग नाचेंगे गाएंगे भी, हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलेंगे, कीर्तन भी करेंगे, चैतन्य पथ शंकराचार्य मत, जो रास्ता है वो चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसमें रस है। भगवान गीता के बारे में अध्याय बताते हैं कि जो निर्विशेष की पूजा करते हैं, अव्यक्त की पूजा करते हैं, उनका मार्ग बहुत क्लेशदायक है। वो तो कर नहीं सकते, पूर्ण चक्रों में पड़े, ध्यान लगाओ, किस पे ध्यान लगाओ। प्रभुपाद कहते हैं भगवान ने बोला हा मया ततम इदम जगत सर्वद अव्यक्त मूर्ति ना, मैं अव्यक्त हूं साथ में मूर्ति लगा दिया, यानी कि हर वस्तु की एक हर का एक फॉर्म है। अव्यक्त क्यों नहीं बोला, अव्यक्त मूर्ति ना। अब जो मैं अव्यक्त के रूप में भी विद्यमान हूं उसकी भी मूर्ति है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। हर चीज की मूर्ति, हर चीज का फॉर्म है। उन्हें जो बिना फॉर्म के किसी वस्तु पर ध्यान लगाएंगे उनका मार्ग क्लेशदायक होगा। तो उस क्लेश से बचने के लिए वो क्या करते हैं, नाचते गाते हैं, नकल मारते हैं हमारी, लेकिन बोलते हैं इन लोगों को असली चीज नहीं मालूम, ये यहीं अटक जाते हैं। लेकिन इससे परे भी एक चीज है, वो क्या है, निर्विशेष भ्रम, हम उसमें लीन हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद के शिष्य हिजोलीनाथ संगीरा स्वामी महाराज, उन्होंने पुस्तक लिखी वॉटरिंग द सीड, उसमें बता रहे कि प्रभुपाद से पहले कैसे मिले। तो गिरिलाल महाराज का नाम था ग्लेन, तो ग्लेन बहुत ही धनी माता पिता के बेटे थे, लेकिन सत्य की खोज में अलग अलग स्वामी गुरुओं के पास जा रहे थे। तो प्रभुपाद का जब उन्होंने प्रवचन सुना तो प्रभुपाद इसी ढंग से मायावाद का खंडन कर रहे थे, तो बोला कुछ प्रश्न उत्तर, तो उन्होंने भी हिम्मत करके एक प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने बोला आजकल इतने स्वामी हैं, इतने योगी हैं, हर कोई अपना मार्ग सही बताता है, मैं कैसे मानूं कौन सा ठीक है। तो प्रभुपाद ने साली ये बोला, डू यू वॉन्ट टू बिकम गॉड और डू यू वॉन्ट टू सर्व गॉड। अगर आप भगवान बनना चाहते हैं, इसका अर्थ है कि पहले आप भगवान नहीं थे, आप भगवान बनना चाहते हो। और अगर भगवान बनना चाहते हो तो भगवान अपना कॉम्पिटिशन क्यों एनकरेज करेंगे? तो आप भगवान तो कभी बन नहीं सकते। सो बेटर है कि भगवान की सेवा करने का प्रयास करो। और जब भगवान की सेवा करोगे तो प्रभुपाद ने बोला वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम गॉड, वी शुड ट्राई टू बिकम गॉडली। बहुत सुंदर संदेश है, हम गॉडली बनने का प्रयास करें, गॉड बनने का प्रयास ना करें। लेकिन हमारे सारे के सारे प्रयास भगवान बनने को होते हैं। भगवान के मन में बात आई सृष्टि की रचना हो, तुरंत सृष्टि की रचना हो गई। हमारे में मन में कोई बात होती है हमसे तुरंत हो जाए, हम तुरंत चाहते हैं उस वस्तु को, लेकिन हम भगवान नहीं है। हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी भगवान की कृपा की, हमें निर्भर रहना पड़ेगा, हम आश्रित हैं, हम आश्रय नहीं है। तो भगवान और जीव में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। भगवान इस सृष्टि के कण कण में फैले हुए हैं, तब भी भगवान अपने धाम में भी स्थित हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया कि ना तस्य कार्यम कारणम न विद्यते, भगवान के कार्य करने कोई कारण बनता नहीं, क्योंकि इतनी शक्तियां पराशय शक्ति विविधे वस्तु होते, भगवान की अनंत शक्ति है, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया अपने आप वह सारे कार्य हो जाते हैं। तो भगवान क्या ऐसे खाली है? अब सोचिए, वैसे तो बोला गया आत्मा सक्रिय है, तो भगवान क्या खाली बैठे रहेंगे? क्या कहना आपने, ना तस्य कार्यम कारणम विद्यते, उनके कार्य करने का कोई जरूरत ही नहीं है, सब शक्तियां काम कर रही हैं। जब आत्मा सक्रिय है तो परमात्मा निष्क्रिय हो सकते हैं, आत्मा भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों के हिसाब से। आध्यात्मिक जगत में भगवान उठते हैं सुबह सुबह गाय चराने ले जाते हैं, ऐसे खाली नहीं बैठे रहते हैं, वंशी बजाते हैं, गायों की पूरी देखभाल करते हैं। और फिर भगवान को विकार भी लगता है, भगवान थक जाते हैं, बाल बाल उनके पांव दबाते हैं, भगवान को पसीना भी आता है, आते हैं, भगवान को भूख भी लगती है, ये सब लीला है ना। और फिर भगवान विकार भी आते हैं, जैसे अष्ट सात्विक विकार भी आ जाते हैं। ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, महाभाव प्रकाश रूप है, चैतन्य महाप्रभु जो थे उनके देह में अष्ट सात्विक विकार आते थे। वह गंभीरा से जो निकल गए और सिंह द्वार पे वो पाए गए, बिल्कुल जैसे कद्दू का हो जाते हैं बहुत बड़ा, वैसे उनका सारे हाथ पांव अंदर हो सिकुड़ गए, या कई बार उनके हाथ पर बहुत लंबे हो जाते थे। ये सब विकार अर्थ सात्विक विकार है, लेकिन ये योग माया के अंदर है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन होते हैं। तो ये भगवान अपने साथ अपने भक्तों के साथ लीला का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन भौतिक जगत के लिए केवल दृष्टिपात करने मात्र से ही भौतिक जगत की रचना शुरू हो जाती है। और फिर भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है दुर्गा माता, उनकी अध्यक्षता में सब शुरू हो जाता है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका, छाए वयस्य भवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूप यस्य कला विशेषम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो दुर्गा माता है वही सृष्टि करती है, वही पालन करती है, वही श्रृंगार करती है। और दुर्गा माता भगवान की बहिरंगा शक्ति है जो कि उनकी अध्यक्षता में चलती है। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है, लेकिन भगवान ने शुरुआत तो की ना, दृष्टिपात तो किया, ये तो कार्य हो गया। जब कार्य किया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की होनी चाहिए। बोलिए, शरारत तो भगवान ने की ना, दृष्टिपात कर दिया। अब उनकी शक्तियां ऐसी हैं कि दृष्टिपात करते ही सृष्टि का सृजन शुरू हो गया, दृष्टिपात ना करते तो प्रधान प्रधान ही रहता। फिर तो भगवान का उत्तरदायित्व ठहराना चाहिए सृष्टि के जगत के लिए। जब भगवान ओरिजिनल क्रिएटर तो भगवान ही है, दृष्टिपात की और सृष्टि की रचना हो गई। भगवान ने निश्चित रूप से, हां अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने सृष्टि की रचना की, मान सकते हैं उनको डूअर, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे भगवान दृष्टिपात करते हैं, हम सब जो अनंत कोटि जीव उस ब्रह्म में, जो महत्तत्व में भगवान वो जीव के जीव को, जिसे कहते हैं स्त्री के गर्भ में पिता के वीर्य के द्वारा जीव स्थानांतरित होते हैं, इसी ढंग से भगवान के दृष्टिपात के द्वारा शंभु पार्वती से शंकर के सारे कैसे जीवात्माओं को प्रकृति के गर्भ में डालते हैं। और जैसे जीव प्रकृति के गर्भ में आते हैं तो अपने पूर्व इच्छाओं के द्वारा, जैसे उनकी इच्छाएं थी उनके अनुसार उनको अलग अलग शरीर मिल जाते हैं। तो शेलू गोस्वामी कहते हैं पाप बीजम, जैसे पाप का बीज होता है, सब पाप बीज क्या है, भौतिक इच्छाएं, तो उसके द्वारा उनको अलग अलग शरीर की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण दिया गया है, जैसे बादल वर्षा करते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर वर्षा करते ही अलग अलग तरह की वेजिटेशन, अलग तरह के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जो बादल है वो उस पौधों की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बादल ने केवल वर्षा के। इसी ढंग से भगवान ने केवल दृष्टिपात किया, किसको कैसा शरीर मिलेगा, कौन सी योनि मिलेगी, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के, हमारी इच्छाओं के अनुसार है। हम लोग अनादि काल तक महाविष्णु के उदर में रहते हैं, इसको विहार योग इसलिए बोला गया, ये भगवान की लीला है। लीला का अर्थ है कि जब भगवान की इच्छा होती है तब वो सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के उदर में सारे के सारे बद जीव होकर स्ट्राइक करें, बोले सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। भगवान को वश में होकर कोई नियम था, टाइम हो गया भैया ऑर्डर देना है, डेट ड्यू डेट आ गई है, सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी, नहीं, भगवान की इच्छा है। भगवान अगर बद जीवों पर कृपा करेंगे तो सृष्टि की रचना कर देंगे, उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी, वो सृष्टि की रचना हो गई और उसको भगवान मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं, एक एक अणु में भगवान विराजमान हो जाते हैं। ये देखिए भगवान की विशेष कृपा है, जब हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों को सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमें भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता और बढ़नी चाहिए। आज रुक्मिणी माता का आविर्भाव दिवस है, भगवतम दशम स्कंद में रुक्मिणी माता भगवान को कहती हैं कि आप निष्किंचन हैं। निष्किंचन का क्या अर्थ होता है, जिसके पास कुछ नहीं है। अरे कैसी बात है, आप निष्किंचन हो। और बड़ा सुंदर आचार्य ने बोला कि निष्किंचन कैसे हैं, जिसके पास कुछ नहीं है। अगर हमारे को किसी व्यक्ति किसी चीज का स्वामी बनना है, अपने पास कुछ रखना है, पोजेस करना है, तो हमें उस वस्तु से बाहर होना पड़ेगा, है ना। इस ग्लास को मैं चाहता हूं तो ये ग्लास और मुझ में अंतर है, ग्लास को मैंने कुछ धन दिया, ग्लास खरीदे, ग्लास मेरा हो गया। लेकिन इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु भगवान में ही विराजमान है, भगवान की शक्तियों पर आधारित है, और कृष्ण एक एक वस्तु में स्वयं विद्यमान है, तो उनसे बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो वो क्या रखेंगे अपने पास, वो किसके स्वामी बनेंगे। इसलिए आप निष्किंचन हो, इसलिए भगवान एक एक अणु में विराजमान है। तो भगवान की सर्वव्यापकता का उदाहरण कई बार दिया जाता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वव्यापक है, जैसे वायु सर्वव्यापक है, लेकिन भगवान इस तरह से सर्वव्यापक नहीं है। वायु का और सूर्य के प्रकाश का पूरी सृष्टि पे कोई नियंत्रण नहीं है। जब भगवान सर्वव्यापक हैं तो भगवान प्रत्येक जीव के भाग्य के भविष्य, वर्तमान और भविष्य को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, एब्सोल्यूट कंट्रोलर है। एक अणु भी भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं है। भगवान सर्वव्यापक भी हैं और प्रत्येक अणु के पूरे नियंत्रक भी हैं। लेकिन विशेषता क्या है कि नियंत्रक होते हुए भी भगवान उनसे बिल्कुल अटैच नहीं है, भगवान उनके कार्यों में इंटरफेयर नहीं करते, भगवान चलने देते हैं। ठीक है, आप सोचिए ये भगवान का कौन सा ऐश्वर्य है, वैराग्य का। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं हम जानते हैं, कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं, क्या क्या हैं? धन, ज्ञान, बल और यश और शक्ति। धन, शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य 6 है। तो 6 वैराग्य को छोड़कर हम पहले 5 के 5 ऐश्वर्य चाहते हैं, ये 6 ऐश्वर्य कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है वैराग्य? सब धन चाहेंगे, ज्ञान चाहेंगे, बल चाहेंगे, यश चाहेंगे, सौंदर्य चाहेंगे, है ना? इसको चाहते हैं, इसको भोगना चाहते हैं, इसको इसके मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं। लेकिन भगवान वैराग्य दिखा रहे हैं, पूर्ण रूप से नियंता है लेकिन वैराग्य दिखा रहे हैं। कोई जीव भूलना चाहता है भूल जाओ, कोई जीव याद करना चाहते हैं आ जाओ, पूर्ण रूप से वैराग्य। तो ये वैराग्य का ऐश्वर्य के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। जब तक हम भगवान के ऐश्वर्यों के भोगी बनना चाहेंगे, इसका मतलब भगवान से कॉम्पीट कर रहे हैं, तो हम भगवान को समा नहीं सकते। पद्म पुराण में बताया गया है, एक द्वेषी और क्रोधी व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता। हम क्रोध भी करें और द्वेष भी करते हैं, हम कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। और भगवान के ऐश्वर्यों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। अब भगवान हर जगह आपसे पूछा जा रहा है कि कण कण में विराजमान क्यों है। जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा है चेतन, और जड़ वस्तु में भी परमात्मा है। तो जीवात्मा के अंदर परमात्मा क्या कार्य करते हैं? साक्षी हैं, उपदिष्ट अनुमंता, उनका सेंक्शन करते हैं, साक्षी हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जड़ वस्तु में भी एक एक वस्तु में परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है। क्यों? सोचा कि हाँ, वेरी नाइस। क्योंकि जब तक परमात्मा किसी वस्तु में उपस्थित नहीं होंगे, उस वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। दूसरा ये दिखा रहा है कि भगवान एक एक भक्त का कितना पर्सनल रूप से ख्याल रख रहे हैं। इस सृष्टि में जो भी पूरा अस्तित्व, जो भी वस्तुएं हमें नजर आ रही हैं, उसमें परमात्मा स्वयं विद्यमान है। और हर वस्तु की क्रियाशीलता, उसका गुण परमात्मा की उपस्थिति के कारण है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? तो हमारे साथ भी है, लेकिन जड़ वस्तु में भी क्यों है? ताकि इन वस्तुओं को हम भगवान की सेवा में लगाकर वापस भगवत धाम जा सकें। इस पूरी की सृष्टि की रचना भगवान ने इस ढंग से की है ताकि इसमें पूरी की पूरी सुविधाएं हैं कि हम भगवत धाम वापस जा सकें। ईशो उपनिषद के प्रारंभ में ही कौन सा श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और भगवान से जो सृष्टि की रचना हो रही है वो भी पूर्ण है। और इस पूर्ण से पूर्ण की सृष्टि रचना होने के बाद पूर्ण का क्या होता है? पूर्ण ही रह जाता है। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स में 1 - 1 = 1, नॉट जीरो। मायावादी कहेंगे जीरो, बाकी है ये 1। तो इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि अपने आप में पूरी पूर्ण है, लेकिन हम लोगों को कभी ये पूर्ण लगती नहीं। संसार में हर जगह हर पहलू में हमें किल्लत नजर आती है, शॉर्टेज नजर आती है, तभी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है कि डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है। हर जगह आप देखिए कॉम्पिटिशन है, रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है, हर जगह कमी नजर आ रही है। भगवान कह रहे हैं यहां पे पूर्णम, संसार पूर्ण है। पूर्ण क्या है? क्योंकि पूर्ण रूप से सुविधाएं दी गई हैं कि हम भगवत धाम वापस जा सकें। और भगवान भी, भगवान की सृष्टि, भगवान की शक्ति भी पूर्ण है अगर वो शक्ति शक्तिमान से कनेक्टेड रहे, संबंधित रहे। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, ये हाथ अपने आप में पूर्ण तब है जब तक ये शरीर से जुड़ा रहे, ये हाथ काट दिया जाएगा तो अपूर्ण हो जाएगा। इसी ढंग से जब हम भगवान की सेवा से विमुख हो जाते हैं तो हम अपूर्णता का अनुभव करते हैं। जब भगवान की सेवा में लगे रखते हैं तो भगवान सरस्वती ठाकुर महाराज क्या बोलते हैं, विश्वम पूर्णम सुखायते, पूर्ण रूप से हमें सुखदायक लगता है। लेकिन अगर भगवान की सेवा से विमुख होकर इस संसार में को भोग की दृष्टि से देख रहे हैं तो क्या होगा, अपूर्ण, हमेशा हमें अपूर्णता का अनुभव होगा। जितना मर्जी धन कमा लें, जितनी बड़ी से बड़ी गाड़ियां ले लें, बड़े से बड़े घर बदलते रहे, हम कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान से हम कनेक्टेड नहीं है। किसी प्रकार की भी सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा पूर्ण हो जाएगी अगर हम इसको भगवान से जोड़ेंगे। चैतन्य भागवत में बताया गया है, अगर आपको इस संसार में सुख ही चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका, अगर ये भी इच्छा है तो वो भी गोविंद की पूजा किए बिना, गोविंद की सेवा किए बिना संसार में भी सुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए इस संसार में पूर्णता का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब हम सेवा में लगे हों। और प्रभुपाद बताते हैं हर तरह की अपूर्णता का अनुभव हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पूर्णता का पूर्ण ज्ञान नहीं है। ऑल काइंड ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज बिकॉज द इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट होल। प्रभुपाद बहुत पोएटिक तरीके से लिखते हैं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में और ईश्वोपनिषद के इंट्रोडक्शन में। तो ये हमें समझना है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दो तरह के स्फुलिंग है आध्यात्मिक, एक आत्मा और एक परमात्मा। इस भौतिक जगत में दोनों कौन कौन है, इन दोनों में से आत्मा भी है और परमात्मा भी है। जब आत्मा और परमात्मा दोनों ही यहां पर इस भौतिक जगत में हैं, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह समझ जाएगा कि इस भौतिक जगत का उद्देश्य, इसका मतलब इंद्र तृप्ति नहीं है, अन्यथा इस जगत में आत्मा और परमात्मा क्यों होते। भौतिक का उद्देश्य इंद्र तृप्ति नहीं है, इस भौतिक जगत का उद्देश्य है भगवान की सेवा। इस भौतिक जगत भक्ति के लिए प्राप्त हुआ, जीव गोस्वामी कहते हैं। प्रत्येक वस्तु को हमने भगवान की सेवा में अगर जोड़ देंगे गुरु के निर्देशन में, प्रभुपाद बताते हैं वो स्थान वैकुंठ बन जाएगा। ये पूरा भौतिक जगत वास्तव में आध्यात्मिक ही है। हमारी विमुख होने की चेतना से सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी होने के कारण इसको भौतिक बोला गया है, अन्यथा ये वास्तव में आध्यात्मिक ही है। और ये हमारी माया का हमारे पर प्रभाव है, माया से हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है कि हमें संसार में भोग की इच्छा रखते हैं। तो वास्तव में प्रत्येक वस्तु में परमात्मा इसलिए विद्यमान है ताकि उसका अस्तित्व रहे। और जो निष्क्रिय जीवात्माएं थी महाप्रभु विष्णु के उदर में, उनको अब क्रियाशील बनाया गया है कि वो क्रियाशील बनकर इन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाकर अपने आप को शुद्ध कर भगवत धाम वापिस चले जाए। ये पूरी सृष्टि का अरेंजमेंट है और इस पूरे अरेंजमेंट कंप्लीट है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारी गलत मानसिकता चेतना के कारण हम इनका दुरुपयोग करते हैं और इसलिए हम जन्म जन्मांतर कर यहां सृष्टि में कष्ट पाते रहते हैं और हमें हमेशा हम अपूर्ण अपने आप को अनुभव करते हैं। इसलिए परमात्मा जब विद्यमान है प्रत्येक वस्तु में तो वो भक्तों की सेवा कर रहे हैं, हर एक जीव की सेवा कर रहे हैं। आत्मा का अर्थ है सेवक, परमात्मा का अर्थ है परम सेवक। और हम देखते हैं जब प्रहलाद महाराज के ऊपर हिरण्यकश्यप उनका वध करने का प्रयास कर रहे थे, तो प्रहलाद महाराज को तरह से प्रयास किए गए उनको मारने के लिए। तो जब उनके ऊपर भालों से प्रहार होता था तो प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं होता था। आप भौतिक जगत का नियम देखेंगे, अगर आप चाकू से अपने ऊपर प्रहार करेंगे तो क्या होगा, हाथ कटेगा ही। तो भाले पड़ रहे हैं प्रहलाद महाराज के ऊपर, उनका वध नहीं हो रहा, उनके शरीर पर खरोच भी नहीं आ रही, क्यों? कैसे रक्षा कर रहे हैं? प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, आचार्यगण क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भाले हैं उनके अंदर भी कौन बैठे हैं, परमात्मा। वो उसका एक्टिव प्रिंसिपल चेंज कर देते हैं। भाले मारे जा रहे हैं लेकिन प्रहलाद महाराज को ऐसा कहते हैं कि फूल बरसाए जा रहे हैं, ये परमात्मा है। तो इसलिए परमात्मा सब सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं कि हम भगवत साक्षात्कार कर सके। तो हमारे को गुरु और परमात्मा के संरक्षण में रहकर प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना है। जैसे कि हमने चर्चा की कि हमें भगवान नहीं बनने का प्रयास करना, भगवान के गुणों के समान, भगवान के समान बनने का प्रयास करना है। वी डोंट हैव टू ट्राई टू बिकम गॉड, बट वी हैव टू ट्राई टू बिकम गॉडली। हम सब अपना थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें, हम गॉडली बनना चाहते हैं कि गॉड बनना चाहते हैं? यहां पे किसी को लगता है कि कोई भगवान भी बनना चाहता है, कोई हाथ खड़े नहीं कर रहा ना? भगवान के सामने हाथ खड़े करते डर है ना, आल्टर बंद हुआ तब पूछना चाहिए। तो चलिए ठीक है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, यूनैनिमस डिसीजन ये माना गया कि हम सब क्या बनना चाहते हैं, हैं? गॉड बनना चाहते हैं। बताया गया हमें गॉडली बनने के लिए, नहीं वास्तव हम गॉड बनना चाहते हैं। अब बोल रहे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, हम परम भोक्ता बनना चाहते हैं, परम नियंता बनना चाहते हैं, परम स्वामी बनना चाहते हैं। भगवान सर्वस्व है और एक एक अणु पे भगवान का पूरा नियंत्रण है, लेकिन भगवान फिर भी सबको स्वतंत्रता दे रहे हैं। हम देखें, हम सर्वस्व नहीं है, एक स्थान पर स्थित है और हम चाहते हैं कि हर जगह हमारा कंट्रोल हो, जहां तक संभव हो मेरा कंट्रोल हो, हर जगह मैं छाया रहूं। और जो मैंने सृष्टि की रचना की है, मैंने क्या उत्पन्न किया है, मैंने अपने संतान को उत्पन्न किया है, एब्सोल्यूट कंट्रोल, मैं संतान के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहता हूं। क्या हमारा उस संतान के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल है? कुछ भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे मैं चाहता हूं वो संतान वैसे ही करे। इच्छा यह होनी चाहिए कि जैसे परम पिता चाहते हैं वैसे मैं भी करूं और वैसे ये भी करे। प्रभुपाद बोलते हैं ना मैं खुद आज्ञापारी संतान बन सका, ना अपनी संतान को आज्ञाकारी बनने दूंगा। भगवान कह रहे हैं क्या बोलो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी भक्ति शुरू करो। और भक्ति करना बहुत आसान है, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। जब लोग बोले सर धर्मों को छोड़कर, तो सोचते हैं कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, काम धंधा छोड़ना पड़ेगा, तो लोग डर जाते हैं। हम ऐसे भगवान नहीं चाहिए, है ना, हम ऐसे ठीक है। लेकिन सर धर्मों को त्याग करने का अर्थ है जो फालतू के हमने ड्यूटीज पाल रखी अपने जीवन में उनको छोड़कर, ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन की, यहां बोला गया भगवान को दुर्बोधा, बहुत कठिन है उनको समझना, लेकिन बहुत कठिन वस्तु को हम समझ सकते हैं इस बहुत कठिन दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर। तो जो मनुष्य जीवन में जो सीमित समय हमारे पास उपलब्ध है, सीमित शक्ति हमारे पास उपलब्ध है, इसका पूरा उपयोग करना चाहिए भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए। तो हम लोग जो भगवान बनने का हमारे अंदर भाव है, इसको त्याग करके हम सेवक बनने का प्रयास करें। और जब हम सेवक बनने का प्रयास करेंगे तो भगवान के जितने भी गुण हैं हमारे अंदर आ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद पूरे जगत गुरु के, कैसे कि प्रभुपाद एक स्थान पर स्थित रहते थे, लेकिन इस संसार में प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे सबको ऐसा लगता था कि प्रभुपाद उनको व्यक्तिगत संपर्क दे रहे हैं, व्यक्तिगत अपना एसोसिएशन दे रहे हैं। प्रभुपाद के ऐसे कितने शिष्य थे जो प्रभुपाद से मिले भी नहीं थे, केवल एक सेकंड के लिए मिले, दो सेकंड के लिए मिले, एक बारी कभी बातचीत हुई, लेकिन वो लगता नहीं प्रभुपाद हमेशा उनके साथ है। तो ये प्रभुपाद जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर भी भगवान वाले गुण आ जाते हैं। भागवतम में हम कई जगह देखते हैं सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहके पुकारा गया, नारद मुनि को भगवान कहके पुकारा गया, भगवान शिव जी को भगवान कहके पुकारा गया, ये सब वैष्णव है। तो गॉडली हो गए, साक्षात हरित्वेन हरि जैसे गॉडली। तो सारे के सारे गुण हमको विकसित करने, क्योंकि आत्मा गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान ही है। तो जब हम सेवा में जुड़ते हैं तो आत्मा के जो नेचुरल गुण है वो प्रकट होते हैं। तो हम लोग भगवान बनने का प्रयास करें। भगवान देखिए सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी और एब्सोल्यूट कंट्रोल होते हुए भी, भगवान सर्वत्र विद्यमान इसलिए नहीं है कि अपनी भगवत्ता दिखाएं, अपना रोब जमाएं, चाहने को कर सकते हैं। भगवान द्वारका में थे, द्वारका की जो रानियां थी भगवान को आकर्षित करना चाहते थे अपने तरह तरह के मुद्राओं से, स्त्री के आकर्षण के द्वारा, नहीं भगवान उनके सुंदरता से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते थे। हालांकि वो परम स्वामी परम भोक्ता कहे गए हैं, लेकिन वो आकर्षित होते थे उन रानियों की सेवा की भावना से, उनको भोग की दृष्टि से भगवान कभी भी नहीं देखते थे। लेकिन हम लोगों को नियंत्रण भी नहीं है, हम परम भोक्ता भी नहीं है, परम स्वामी भी नहीं है, लेकिन हर वस्तु को हम भोग की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमें हमेशा अपूर्णता का अनुभव होता है। और अगर हम हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम अपने आप को हमेशा पूर्ण पाएंगे और पूरा जगत हमारे लिए बहुत ही सुखदायक होगा। तो इसलिए आज के श्लोक से हम ये जान सकते हैं कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं, लेकिन भगवान बहुत कृपा करके इस सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि की रचना करके इस दुर्वबोध ज्ञान को भगवान हमें बोधामृत भी देते हैं। बोधामृत क्या है? सारे ज्ञान का जो अमृत है वो भगवद गीता है, वो शास्त्र है, जिसको हम सही ढंग से पढ़ें समझें और फिर हम भगवान को जान सकते हैं। इससे पिछले श्लोक में ही देवताओं ने बताया है कि आप कैसे जाने जा सकते हो, भगवान को वो बता रहे हैं कि अतः आपका साक्षात्कार शेष सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति योग में पूर्णता समाधि मग्न होकर सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। यानी कि प्रीचिंग इज द एसेंस। जितना हम भगवान और भगवान के गुणों का प्रचार करेंगे, जितना हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करेंगे, उतना क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध होगा। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि भक्ति किसको प्राप्त होती है। कौन सा श्लोक है जिसे बताया जाता है कि जिसे भक्ति प्राप्त होती है? हाँ, भ्रम भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। तो बताइए, भगवान की पराभक्ति, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो गई? ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म के लक्षण क्या है? ना शोचती ना कांक्षती, शोक नहीं करता, फालतू की इच्छाएं नहीं रखता। और ब्रह्मभूत क्या होता है? प्रसन्न आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहता है। और क्या करता है वो? समा सर्वेषु भूतेषु, सब जीवों में समान भाव रखता है। तब उसको क्या प्राप्त होती है? भक्ति। तो भाई, हमारे में गुण कैसे आएंगे? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु, तब मिलेगी भक्ति। कई पद्म पुराण ने बताया गया, दोषी क्रोधी और द्वेषी व्यक्ति को भक्ति नहीं मिल सकती। द्वेष होगा तो हम सब लोगों से समान व्यवहार करेंगे? नहीं करेंगे। शोचती कांक्षती करते रहेंगे, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तो फिर भक्ति कैसे प्राप्त होगी? अब ब्रह्मभूत किस प्लेटफॉर्म में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे पिछले श्लोकों में बताया गया है, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बुद्धि मनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्रियों पर संयम करना पड़ेगा। वो इतनी लंबी लिस्ट है, उसे बोले भैया संभव नहीं है। फिर क्या करना है, कैसे करें? क्या विचार है? ये संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सेवा की भावना से खूब प्रचार करें, सबको भगवान और भगवान के ऐश्वर्यों का ज्ञान दिलाएं। प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को तो मोस्ट पॉपुलर गॉड बना दें। सब क्या कंफ्यूजन फैला हुआ है पूरा सोसाइटी में, कंफ्यूजन। गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि वो जब जाते थे दीक्षा के बाद, वो और सत्स्वरूप महाराज जाते थे एक बॉस्टन में एक ऐसी जगह पर जहां सारे यंगस्टर इकट्ठे होते थे, रॉक बैंड्स भी आते थे, सब परफॉर्म करते थे, तो ये लोग भी वहां पहुंच जाते थे और लोगों को बुक्स बांटते थे, आपस में कीर्तन करते थे। तो वहां कीर्तन भी हो रहा था और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था। तो एक युवा मिल गया जो कि अध्यात्म में बहुत रुचि रखता था, तो गीतामा ने बोला, बातचीत की, बोला हाँ मैं भी भगवान हूँ, मेरे गुरु ऐसे मिल गए जिन्होंने भगवान बना दिया है। तो गीतामा ने पूछा, आप उसको विश्वास करते हैं कि वो भगवान है? कहता हाँ निश्चित रूप से। तो अगर बोले कि आप उसको विश्वास करते हैं कि वो भगवान है, अगर मैं बोलूं कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूं, आप मान जाओगे? कहता हाँ मान जाऊंगा। कहता आप मान जाओगे मैं यूएस का प्रेसिडेंट? कहता हाँ मान जाऊंगा। कहते ठीक है, अगर मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूं तो मैं जो कहूंगा आप करोगे? कहता हाँ करूंगा। क्योंकि वो ईगो में आ गया, वो कहे बात मानी मानिए। बोला आपकी जेब में कितने पैसे हैं? सब निकाला। बोला सब दे दो मुझे। दे दूंगा, दे दिए उसने। $97 थे तो ले लिया गिरम महाराज ने, एक किताब पकड़ा दी, बोले बहुत जाओ वेरी गुड। तो चला गया, बोले ठीक है। अब वो ईगो में फंस गया कि जब उसको भगवान मान सकता हूँ, बोले भगवान तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं भगवान नहीं कह रहा, मैं प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, मान लो मुझे। कहना प्रेसिडेंट हो ठीक है। $97 ले लिया उससे, उसको किताब दे दिए। दो घंटे के बाद बेचारा दुखी हुए वापिस आया, कहता है प्लीज $20 दे दो, किराया देना मुझे। तो गया मैंने $22 वापिस किए। बाद में प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। तो वहां पर गिरा महाराज क्या कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम मायावाद का खंडन करें, हमारा कर्तव्य हम प्रचार करें, इससे हम गुरु के प्रिय बनते हैं। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बहुत कठोरता से मायावाद का संहार करते थे, मायावाद का विरोध करते थे। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज के इस भाव को प्रभुपाद जी ने ग्रहण किया, इसलिए प्रभुपाद जी उनके बहुत प्रिय बने शिष्य। इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अच्छे ढंग से सिद्धांत को समझें और लोगों तक वास्तविक ज्ञान प्रस्तुत करें कि कृष्ण कितने कृपालु हैं, कृष्ण कितने सुहृद हैं, सारी सुविधाएं किस लिए दी गई हैं। लोग अक्सर बोलते हैं, जब उनको बोलते हैं कि मनुष्य जीवन पशु जैसा नहीं है, बोलते हैं हाँ पशु तो इंजॉय कर नहीं सकते, हमें इंजॉय करना चाहिए। पशु बेचारा बिल्ली खाली दूध पिएगी, मैं दिल्ली दूध का मिल्क शेक मैंगो शेक बना के पीऊंगा। बिल्ली की इतनी बुद्धि नहीं है, बेचारी दूध पीती है कच्चा दूध, आम भी साथ में पड़ा है और दूध भी साथ में पड़ा है, वो खाली दूध पिएगी कच्चा, बुद्धि कम है ना। तो मनुष्य जीवन किससे बुला, आम और दूध को मिलाकर मैंगो शेक पीने के लिए। तो इसलिए मनुष्य जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन जाने भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझने का प्रयास करें और प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। इस बात को गंभीरता से हमें लेना चाहिए, तब हम देखेंगे इस जगत में हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, ये जीवन बहुत सरल हो जाएगा। विश्वम पूर्णम सुखायते, अन्यथा ये विश्व एक पहेली बनी रहेगी, आपस के संबंध हमारे पहेली बने रहेंगे। पति पत्नी आपस में झगड़ा ही, अरे विवाह से पहले इतना प्रेम था, क्या हो गया, झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा। अरे बच्चों को मैं इतना ख्याल रखता हूं, झगड़े ही झगड़े। समझ नहीं आ रहा, समझ ये है कि आप हर वस्तु पर प्रभुत्व जमाना चाहते हो, आप सोचते हो कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं कंट्रोलर हूं तो उसको मेरा कहना मानना चाहिए, जैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति ये करेगा। इसके चक्कर में हम समझते ही नहीं है, लेकिन भगवान के इस गुण का अध्ययन करें कि भगवान कितना वैराग्य रखते हैं, एक एक कण कण में उपस्थित हैं, पूर्ण रूप से नियंता है, लेकिन फ्रीडम दे रहे हैं, यथेच्छ से तथा करो, जो इच्छा है वैसा करो, मैंने तेरे को बता दिया। लेकिन हम लोग हर वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं, बुरा मत मानिए, पत्नी चाहेगी कि पत्नी मेरे पूर्ण नियंत्रण में हो, पति चाहेगा पत्नी मेरे पूर्ण नियंत्रण में हो, बच्चे हमारे पूर्ण नियंत्रण में हो, कॉम्पिटिशन चलता रहेगा। तो हर वस्तु एक पहेली बनी रहेगी, क्या हो क्या रहा जगत में पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सारा जो शक्ति है वो व्यर्थ चली जाएगी। तो ये जगत इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, यहां परमात्मा उपस्थित है। परमात्मा के सामने जब हम इंद्र तृप्ति करते होंगे तो कैसा भगवान को लगता होगा, देखिए अगर यहां पर थॉमस एडिसन यहां बैठा हो, जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया, 8000 बार सर खपा खपा के टकरे मार के उसने बल्ब का इन्वेंशन किया, और मैं लेक्चर दे रहा हूं उस बल्ब का उपयोग मैं एज ए पेपर वेट कर रहा हूं, तो उसको कैसा लगेगा कि अरे मूर्ख व्यक्ति, मैंने ये 8000 बार प्रयास करके बल्ब इसलिए बोला था कि इसको पेपर वेट की तरह यूज करो, अरे इसमें थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी डालो इसका प्रकाश मिलेगा, मालूम ही नहीं इतना। तो भगवान को भी ये लगता है, पूरी सृष्टि की रचना इंद्र तृप्ति के लिए नहीं की गई, वो संभव ही नहीं है। इंद्र तृप्ति गोविंद ही करेंगे आपके, जब आप भगवान की सेवा करोगे तो सारी इंद्रिय अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान फिर भी चुपचाप बैठे रहते हैं, आप सोचिए कितने टॉलरेंट हैं भगवान, हमसे तो सहन नहीं होता कि जो हमारे हमारी सृष्टि है, हमारी संतान हमसे कुछ बोल दे, हमसे सहन नहीं होता, और भगवान का हम कितना विरोध करते रहते हैं, भगवान कैसे सहन करते होंगे हमें। हम अंदर से भगवान बनने की इच्छा रखते हैं और भगवान के सामने आते हैं कि मैं भगवान बन जाऊं, भगवान के सामने आकर हम प्रार्थना करें कि मुझे भगवान बना दो। आप देखिए हमारी दुष्टता देखिए, कि आपको थोड़ा बूंदी चढ़ा दूंगा 11 रुपए की, या कुछ भी दे दूं, मेरा काम धंधा चलवा दो, ये कर दो, फिर भी भगवान हमें अलाउ करते हैं, किसी ढंग से आ जाओ मेरे शरण में, धीरे धीरे आपको शुद्ध कर दूंगा। तो हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हम इसका पूरा उपयोग करें और भगवान की सेवा में अच्छे ढंग से लगें प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, तो जीवन बहुत ही सुखदायी हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है, एक दो प्रश्न ले था।
प्रहलाद महाराज के ऊपर फेंका गया, तो आपने बताया उसमें परमात्मा थे जिन्होंने उसका डर वो चेंज कर दिया, तो जैसे उसके बारे में बताया कि लिविंग एंटिटी के साथ परमात्मा होते हैं हमेशा, तो वहां परमात्मा पर्सनली है या उनकी शक्ति के रूप में है, तो जो भाले में परमात्मा जो है वो शक्ति के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं कि भाले में परमात्मा पर्सनली काम कर रहे हैं?
भाले में परमात्मा पर्सनली है, अंडा त्रस्तम परमाणु चय त्रस्त, पूरे ब्रह्मांड में भी उपस्थित है गर्भोदक्षय विष्णु, उनके परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा गर्भोदक्षय विष्णु है, और कण कण के परमात्मा क्षीरोदक्षय विष्णु है, तो अणु में भी उपस्थित है। तो हर एक वस्तु का जो अस्तित्व है बस के कारण है। अब अणु में हर जगह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है लेकिन अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो सर्वज्ञाता नहीं है। एक अणु के प्रोटॉन न्यूट्रॉन दूसरे अणु के प्रोटॉन न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से अलग है। हर एक अणु के जो परमात्मा है वो एक है, वो सर्वज्ञ सबको जानते हैं।
उस वस्तु में परमात्मा के साथ साथ जीवात्मा भी उपस्थित हैं।
ये थोड़ा और गहरा सांख्य है। प्रभुपाद लिख रहे हैं लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ में इवन एटम्स दे डू ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग। इवन एटम्स डू दैट। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा, केवल लिविंग एनर्जी के साथ रहेगा। बहुत वो एक उदाहरण दिया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षियों के समान है, एक उदाहरण दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं बोला कण कण में परमात्मा है। नहीं, शक्ति के रूप में तो भगवान पूर्ण रूप से विद्यमान है लेकिन ये जो एक पार्शियल एक्सपेंशन है परमात्मा, ये भगवान की एक शक्ति ही है। परमात्मा भगवान की शक्ति है, सत्व और चित्त पूर्ण नहीं है, सत्व चित्त। भगवान गीता में कह रहे हैं एकांश स्थितो जगत, अपने एक अंश मात्र से मैं पूरे विश्व की को धारण करता हूं। तो ये भगवान परमात्मा के रूप में कण कण में विद्यमान है और वो दिव्य वस्तु परमात्मा के होते हुए भी जड़ प्रतीत हो रही है। ठीक है, सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंद।